ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम, जैसा कि परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव है, तो पिछले 4-5 दिन से मंदिर में दशम स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हो रहा है। तो उसी क्रम श्रृंखला के अंदर 41वें और 42वें अध्याय के अंदर जो लीला वर्णन हुआ है भगवान का, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कृष्ण भगवान की वृंदावन लीला भागवतम के क्रम के अनुसार समाप्त हो चुकी हैं और भगवान वृंदावन से मथुरा की ओर जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण लगभग 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 11 साल वृंदावन में रुके थे और उसके बाद जो है मथुरा में भगवान ने निवास किया और बाद में द्वारका के अंदर। तो यही श्रीमद् भागवतम में पिछले 2-3 अध्याय से भगवान का वृंदावन से मथुरा में जो उनका गमन है उसके ऊपर चर्चा की जा रही है। और आज क्रम के अनुसार 5 लीला जो भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में प्रवेश करते समय की कंस वध से पहले, उसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रसंग इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा आते हैं। मथुरा के द्वार पे पहुंच कर अक्रूर जी को बोलते हैं कि आप घर जाइए और मैं थोड़ा मथुरा नगरी को दे अवलोकन करके देख करके आता हूँ। अक्रूर जी ने उनसे प्रार्थना किया कि आप शीघ्र कंस का वध कीजिए और जो है भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि आप चिंता ना कीजिए, मैं बहुत शीघ्र जो है कंस का वध करके और फिर आपके घर में आके रहूंगा। अक्रूर जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हमारे गृह में निवास कीजिए। तो बोलते हैं पहले अपना बिजनेस पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद में आपके घर में आऊंगा। और फिर कृष्ण बलराम अपने मित्रों सहित मथुरा नगरी को घूमने के लिए जाते हैं और वे देखते हैं बहुत ही सुंदर, कल के श्लोकों में वर्णन था, बहुत ही सुंदर सिस्टमैटिक नगरी थी वो मथुरा। इनफैक्ट जो उसका मुख्य भवन था वो सोने का बना हुआ था, जो गेट्स थे, है ना। तो इतना बहुत ही भव्य और बहुत ही आरामदायक मनमोहक नगरी थी मथुरा, प्रसिद्ध नगरी। और उसका दर्शन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम और सभी ग्वाल बाल जो है मथुरा में जब जा रहे होते हैं, तो जब वहाँ के लोगों को पता लगता है ये कृष्ण बलराम, वैसे ही उन्होंने सुना होता है बहुत कृष्ण बलराम के विषय में, लेकिन अब पता लगा कि मथुरा आ रहे हैं, तो विशेषकर जो मथुरा की सब स्त्रियां हैं वे जो हैं घरों के द्वार पे चढ़ गईं। उन दिनों वैदिक रीति थी कि स्त्रियां उस प्रकार से स्वच्छंद रूप से गृह के बाहर नहीं आती थीं, तो वे घर पे के चार ऊपर छत से या चबूतरों से कृष्ण बलराम के दर्शन कर रही थीं और बहुत ही उत्सुकता पूर्वक, बहुत ही ईगरनेस के साथ जो हैं वेट कर रही थीं। और अनेक अनेक प्रेम के लक्षण उनके अंदर जो हैं प्रकट हो रहे थे। तो उन पे फूलों की वर्षा की उन्होंने। मैं याद एक बार श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के अंदर जब प्रभुपाद जी धराधाम पे थे, तो कुछ फैनेटिक ब्रह्मचारी ने जो है थोड़ा प्रभुपाद से शिकायत करते थे कि प्रभुपाद जी मंदिर में माताएं रहती हैं, आती हैं तो हमको उत्तेजना होती है। तो प्रभुपाद ने सुना सब ऐसे करके और देखा कि इस प्रकार का कलयुग का तो लक्षण है कि किसी ना किसी बात पे कलह होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कलह का युग है। तो प्रभुपाद जी ने देखा थोड़ा बहुत, और विशेषकर शास्त्रों में कई बारी हमें दिखाई पड़ता है कि स्त्रियों के लिए कुछ शब्द बोले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि, लेकिन प्रभुपाद जी देखते थे कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, किसी भी देह के अंदर हो, हर जीवात्मा के पास भगवान की सेवा का अधिकार है। तो आई थिंक प्रभुपाद हवाई के अंदर थे और जब प्रभुपाद जी आए तो सभी जितने पुरुष थे वहां पे वे तो प्रभुपाद जी के सामने और माला पहनाने लगे, सब करने लगे। और तब प्रभुपाद ने ऊपर देखा तो ऊपर से जो माताएं थी सब वे पुष्प वर्षा कर रही थी जो है। तो प्रभुपाद ने देख करके और तो बोला इस प्रकार से कि अच्छा, अब माताएं सब प्रभुओं के सर पे रहती हैं, है ना। मतलब सब प्रभु को जो करने के लिए कि जो माताओं का स्थान है वो ऊंचा है उस प्रकार से, है कि नहीं। कलयुग का तो लक्षण है कि वो स्त्रियों को वुमेन लिबरेशन के नाम पर जो है घर से स्वतंत्र करके पब्लिक के अंदर उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। लेकिन वैदिक काल के अंदर स्त्रियों को बहुत सम्मानपूर्वक दर्जा दिया जाता था। तो यहाँ पे सभी मथुरा की स्त्रियां भी जो है ऊपर से भगवान श्री कृष्ण पे पुष्प वर्षा कर रही थी और सब उनका एक टक होकर के जो है दर्शन ले रहे थे, सब मथुरा के जो वासी हैं। और जितने ब्राह्मण खड़े थे रास्ते के अंदर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। और जितने भी ऑस्पिशियस आइटम्स होते हैं, दध्यक्ष तही सौद पात्र स्त्रगंधर उपाय नहीं है तावा नर्चु प्रमुदिस्ता तत्र तत्र द्विजातयः। ये वैदिक प्रणाली है कि अक्षत यानी जौ या चावल के दाने और दही, जल भरे कलश, फूल मालाएं, सुगंधित द्रव्य, चंदन के लेप और पूजा की अन्य सामग्री, अन्य वस्तुओं की भेंटों से दोनों भाइयों का सम्मान किया गया। आजकल तो करते हैं रूम फ्रेशनर डाल देंगे या मतलब पीपल डोंट नो ऑस्पिशियस आइटम्स, शुभ जो वस्तुएं होते हैं जिनसे अतिथियों का स्वागत सत्कार करना चाहिए, वो लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन इसलिए लोग चॉकलेट्स देते हैं या इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। लेकिन पहले अतिथियों का सत्कार किया जाता था जिस प्रकार से भगवान का सत्कार किया जाता है। तो अब कृष्ण बलराम तो भगवान भी हैं और पूजनीय भी हैं उस दृष्टि के द्वारा भी, और मथुरा में अतिथि भी हैं, तो दोनों दृष्टिकोण से उनका बहुत सम्मान हो रहा है दोनों भाइयों का। और तो सभी स्त्रियां भी वहां बोली कि ब्रज की, वृंदावन की गोपियों ने क्या तपस्या की होगी कि उन्हें कृष्ण बलराम का निरंतर दर्शन प्राप्त होता है, वो कितनी सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं। तो उनके सौभाग्य की गुणगान करती हैं। अब क्या होता है कि कृष्ण बलराम आगे जा रहे होते हैं। तो अभी तक तो कृष्ण बलराम वृंदावन के वेशभूषा के अंदर थे, ग्वाल बाल की वेशभूषा के अंदर, यानी गांव के वस्त्र डाले हुए थे, है ना। तो अब शहर के अंदर आए हैं तो शहर के वस्त्र डालने हैं। तो देखा एक धोबी है और कृष्ण ने देखा कि वो धोबी जो है उनके पास ही आ रहा है, देखा, और उसके पास कई सारे बहुत अच्छे राजसी कपड़े हैं, वस्त्र हैं। तो कृष्ण ने उससे मांगे कि आप जो ये धुले हुए वस्त्र हैं ये हमको दे दो। तो ये पहली लीला का वर्णन होता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, हम दोनों यानी कृष्ण और बलराम को उपयुक्त वस्त्र दे दीजिए क्योंकि हम इनके योग्य हैं। यदि आप यह दान देंगे तो इसमें संदेह नहीं है कि आपको सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अब जब भागवतम पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी ने तो दशम स्कंद के आई थिंक 13वें या 14वें अध्याय तक ही उसका परपोट लिखा है। तो इसके बाद में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे नहीं, उनके शिष्यों ने लिखे हैं। और प्रभुपाद जी के स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते हुए जहाँ पे लीलाओं का वर्णन आता है प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा तात्पर्य देते भी नहीं हैं। जैसे कि हम चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं या भागवतम में भी कई जगह देखने को प्राप्त होता है कि जहाँ लीलाएँ आती हैं वहाँ दर्शन ज़्यादा प्रभुपाद तात्पर्य नहीं देते। तो प्रभुपाद जी शिष्यों ने भी इस पूरे अध्याय के अंदर हार्डली एक और तात्पर्य बाकी है, 52 श्लोक हैं ऐसे तो। लेकिन अभी मैं 30वें श्लोक में हूँ तो अगले 22 श्लोक में एक या दो ही तात्पर्य हैं बस, वो भी एक एक दो दो लाइन के, जिसमें कुछ डिटेल है विष्णुनाथ ठाकुर ने जो दिया गया है। तो लेकिन प्रभुपाद जी जो कृष्णा बुक के अंदर जो फ्लेवर है वो बहुत स्पेशल है ना। किसी भक्त ने एक बार बोला, प्रभुपाद ने एक किसी भक्त को दिखाते हुए बोला, कृष्णा बुक, यू नो वॉट इज कृष्णा बुक? तो उसने बोला, प्रभुपाद, इट्स अ समरी स्टडी ऑफ 10th कैंटो, कि दशम स्कंद का ये सारांश है। प्रभुपाद कहते, यू नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ समरी? अभी वो समरी मतलब सारांश, समरी मीन्स समरी इन ब्रीफ। प्रभुपाद सेड नो, प्रभुपाद सेड समरी मीन्स यू नो आई राइट वॉट आई वॉन्ट टू राइट, कि मैंने वो लिखा है जो मैं लिखना चाहता हूँ। अर्थात कि मतलब ठीक है भागवतम तो है ही है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसके अंदर अपने जहां जहां पे सिद्धांत की बात आती है वहां प्रभुपाद एक क्षण भी नहीं चूकते विस्तार के अंदर लिखने के लिए। तो प्रभुपाद जी अपने कृष्णा बुक के अंदर इसी प्रसंग में कहते हैं कि भगवान कोई भिकमंगे नहीं थे कृष्ण बलराम, या उनके पास कोई कमी थी कपड़ों की या किसी ऐश्वर्य की। लेकिन मुख्य बात क्या है कि श्री कृष्ण को यदि कोई वस्तु पसंद हो तो उन्हें उनको अर्पित करना चाहिए, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, यही कृष्ण भावनामृत जो विधि है कि भगवान की को प्रसन्न करने वाली सभी वस्तुएं उनको अर्पित की जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहां पे धोबी तो स्वयं आके वस्त्र मांगे, लेकिन धोबी बहुत ही दुष्ट बुद्धि का था। समहाउ जहां जहां पे धोबी का वर्णन आता है सब विलेन के रोल ही निभाते हैं। रामायण के अंदर भी सीता माता को राम जी ने जिसकी वजह से बहिष्कार किया वो भी धोबी था, यहां भी एक धोबी की चर्चा आती है। तो वो धोबी से जब भगवान ने इस प्रकार याचना की तो वो घमंडी नौकर बहुत क्रोधित हो गया कृष्ण बलराम के ऊपर ही, आप सोचिए भगवान के ऊपर क्रोधित होकर और उनकी बेइज्जती करने लगा, बड़े कटु वचन बोलने लगा। वो बोलने लगा ईदृश्यानि एव वांसांसि नित्यं गिरि वनेचरः परिधत्त किमद्रुत्ता राज्य द्रव्याण अभीप्सतः। वो कह रहे हैं कि हे उद्दंड बालकों, तुम जंगल में रहने के आदि हो, गिरि मतलब पर्वत और वन मतलब जंगल, तो पर्वत और जंगल में रहने वाले तुम मतलब ग्रामीण लोग हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि जो राजा की संपत्ति है, राजा के वस्त्र हैं, उनको तुम मांग रहे हो, तुम्हारा दुस्साहस तो देखो। और फिर बोलता है याताशु बालिशा मैवम प्रार्थ्यम यदि जिजी विषा बदनंति घनंति लुम्पंति दृप्तम राजकुलानि वै। वो बोलते हैं कि हे मूर्खों, हे बाल बुद्धि वाले लड़कों, जो है यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, प्रार्थ्यम यदि जिजी विषा, जीवित रहना चाहते हो तो क्या करो, यहां से मत मांगो। जब बोलते हैं ना कि क्या गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, तो ऐसे ही जब वे व्यक्ति कोई बहुत हटी हो जाता है या बहुत धीट हो जाता है तो राजा के जो सैनिक हैं उसे बंदी बना लेते हैं और जान से मार देते हैं, उसकी संपत्ति छीन लेते हैं। तो तुम भी जो है ज्यादा यहाँ पे उद्दंड मत हो, ढीट मत बनो। तो ऐसा जब उसने धमकाया उस धोबी ने तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। देखिए कृष्ण भी एक व्यक्ति हैं और अपनी भगवत्ता को भगवान सिद्ध कर रहे हैं, तो भगवान को क्रोधित आ गया। एवं विकत्त मानस्य कुपितो देवकी सुतः, देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण क्या हो गए, कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्। और क्या किया भगवान ने, सिर्फ अपनी उंगलियों, ओरिजिनल कराटे जो है भगवान के द्वारा यहाँ प्रारंभ किया गया, सिर्फ उसे गले पे एक बार किया और सिर धड़ से अलग हो गया, है कि नहीं। कृष्णा बुक में जो हिंदी कृष्णा बुक में ट्रांसलेट किया गया वो तो यह कि भगवान ने एक तमाचा मारा उसके मुंह पे, पर लेकिन यहां लिखा गया रजकस्य कराग्रेण, कर अग्र, कर मतलब हाथ और अग्र मतलब हाथ के आगे वाले भाग से, तो कराग्रेण मतलब लगता तो नहीं कि झापड़ मारा है, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता, पता उंगलियों के टिप से भगवान ने जो है। लेकिन प्रभुपाद जी यहां भी मौका नहीं चूकते एक सिद्धांत को एस्टैब्लिश करने के लिए। वो सिद्धांत क्या है कि भगवान को पहली बात तो किसी अस्त्र शस्त्र या किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है भगवान, और दूसरा भगवान अपने प्रत्येक अंग से किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयान्ति चिराम जगान्ति आनंद चिन्मय सदुजल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान अपने किसी भी अंग से किसी अन्य अंग का कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं, हमारी तरह नहीं कि हाथ से हम भोजन उठाएंगे और मुख से ही भोजन को आस्वादन कर सकते हैं, हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल आप सोचिए कि अपने पैर से भोजन उठाइए और कान में डालिए, ऐसा हम नहीं कर सकते, हमारे में शक्ति नहीं है। लेकिन भगवान में असीमित शक्ति है, भगवान एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, परम सत्य है। तो भगवान जो है अपने नेत्रों से भोग लगा सकते हैं और जो है ऐसे भगवान अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु, कहां से ब्रह्मा जी उत्पत्ति होती है, भगवान की नाभि से, और उन्हें ऐसा नहीं कि माता लक्ष्मी की आवश्यकता थी संतान उत्पत्ति करने के लिए, नहीं, भगवान अकेले ही सिर्फ नाभि से ही कमल प्रकट करके जो है जीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो ये भगवान की जो है दिव्य शक्ति है। तो उसी प्रकार भगवान ने जो है अपने हाथों के अग्र भाग से जो है उस धोबी का सिर काट दिया, कोई तलवार या चाकू या कोई भाला इत्यादि की आवश्यकता नहीं थी। तो जब ऐसा किया तो धोबी के जो इतने बाकी नौकर थे वो बहुत डर गए, तो जितने भी उनके कपड़े थे, गट्ठर थे, सब फेंक के वो भाग गए वहां से, बोले जान बचनी चाहिए अभी। तो और तब भगवान श्री कृष्ण ने सारे वस्त्र ले लिए और कृष्ण बलराम ने जितने बच्चे थे सबने अपने पसंद के कपड़े जो हैं चुन लिए और फिर उनको पहन लिया। और जो कृष्ण बलराम को पसंद थे पहले उन्होंने पहन लिए, बाकी ग्वाल वालों को बांट दिए। फिर क्या हुआ कि एक अब लेकिन कपड़े तो थोड़े बड़े होंगे, उनके साइज के नहीं थे थोड़े से, तो फिर एक बुनकर, बुनकर मतलब दर्जी, टेलर, ततस्तु वायकः प्रीतस्तर्यो वेशम कल्पयत विचित्र वर्णैश्चलयार्क अकल्पेर अनुरूपतः, कि एक वायक अर्थात बुनकर या दर्जी, एक टेलर वहां पे आया और जो है उसने देखा कि इतने सुंदर बच्चे हैं तो बड़े प्रेम पूर्वक बड़े स्नेह से उन्होंने क्या किया, उसने हाथों हाथ उनके कपड़ों को उनके साइज का फिटिंग कर दिया टेलर। और बहुत ही सुंदर वे वस्त्र थे, रंग बिरंगे पोशाक थे, वस्त्र आभूषण बहुत ही। तो कृष्ण बलराम वैसे ही बहुत सुंदर है। जय श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। उस दिन कृष्ण बलराम ने ब्लू नहीं डाला था, रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के कलर थे। आज तो भगवान ने ब्लू कलर डाला है जैसे, लेकिन वो अलग अलग रंगों के कलर थे, के वस्त्र थे। तो वस्त्र आभूषणों से जो है, और भगवान ने बहुत सुंदर वस्त्र डाले, तो वैसे सुंदर हैं और सुंदर लगने लगे। और फिर उस टेलर ने क्या किया, भगवान को कंगन से, कुंडल से, ऐसे कई और चीज सजाया जो कि मणियों की तरह लग रहे थे। और अनुरूपतः, अनुरूपतः मतलब कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था कलर्स का, ऐसा नहीं कि लीपापोती कर दी थी बस, जैसे मर्जी भी कलर डाल दिए थे, बट परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है ना। तो उस कलर से भगवान और भी अधिक उनका जो सौंदर्य था वो बढ़ गया। और तो कृष्ण बलराम बहुत सुंदर दिखने लगे और वे उत्सव के समय सजाए गए श्वेत और श्याम हाथी के बच्चों की जोड़ी के समान लग रहे थे। तो हाथी से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि अभी वे मल्ल युद्ध करेंगे आगे जा करके, है कि नहीं। और कल आप सुनेंगे कुवलयापीठ हाथी का भी वध होगा। तो बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान श्री कृष्ण, बाल गजव और छोटे, एक श्वेत और श्याम, श्याम मतलब काले कृष्ण और श्वेत बलराम सफेद हाथी के समान। तो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रसन्न हो गए, उस दर्जी से उसको आशीर्वाद दिया कि मृत्यु के उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, मृत्यु के बाद उसे भगवान श्री कृष्ण के जैसा ही स्वरूप प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। और जब तक वह इस लोक में रहेगा तब तक परम ऐश्वर्य, शारीरिक बल, प्रभाव, स्मृति और इंद्रिय शक्ति का भोग करेगा। तो ऐसा भगवान ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। ततः सुदाम्न भवनम मालाकारस्य जगमतु तौ दृष्ट्वा समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। तो जो लोग आपके घर में विग्रह होंगे या आप लोग दर्शन भी करते हैं, तो पोशाक भी हो गया, सबसे पहले ठाकुर जी का पोशाक पहनाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, वस्त्र के बाद आभूषण पहनाए जाते हैं, है ना। और आभूषण के बाद क्या रहता है, पुष्पमाला जो है, उसके बिना श्रृंगार समाप्त पूर्ण नहीं माना जाता। तो भगवान ने देखा अच्छा पोशाक भी हो गया, अभी अच्छे आभूषण भी हो गए, लेकिन अब माला कहाँ से आएगी। तो एक सुदामा नाम का एक माली था वहां पे जो है, जो माला बनाया करता था। तो माला कारस्य जगमतु तो दृष्टा से समुत्थाय नाम शिरसा भुवि। तो उसके घर में चले गए, बोले अच्छा यहाँ पे अच्छी माला मिलती है। तो उसके घर में गए तो सुदामा ने देखा जैसे कृष्ण बलराम आए हैं, ये सुदामा दूसरे हैं जो बाद में भगवान के मित्र जो उज्जैन अवंती के अंदर उनको मिले थे, ये वो सुदामा नहीं है, ये एक फ्लोरिस्ट हैं, फूल वाले हैं। तो जैसे देखा कृष्ण बलराम आए, तुरंत खड़ा हो गया और भगवान के चरणों में प्रणाम किया उसने और उन दोनों को बैठाया। तयोर आसन मानी पाद्यम चार्घ्यम अहरण भी पूजाम सानुगयोस चक्रे सक्त्राम उलानु लेप नहीं। और उसने आसन प्रदान किया, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल धोए और उनके साथियों को अर्घ्य, अर्घ्य समझते हैं क्या होता है, आप सब जानते हैं वैसे अर्घ्य क्या होता है, पता नहीं होगा अर्घ्य बोलते क्या है, लेकिन रोज जब हम भगवान को आरती के अंदर शंख के अंदर जल जो अर्पित करते हैं उसे अर्घ्य बोला जाता है। तो या घरों के अंदर कई बार कलश के अंदर और घास लेकर के ऐसे जो है, पुराने जमाने के लोगों को पता होगा, आजकल के लोगों को तो पता भी नहीं कि क्या होता है ये, उसे अर्घ्य बोला जाता है जल। और जब लोगों पे अर्पित करेंगे, भगवान पे छिड़काव किया जाता है, उसे शांति जल बोला जाता है। लेकिन जब भगवान के पास गिलास रखा जाता है तो उसके अंदर जल अर्पित किया जाता है, शंख से भगवान को पिलाता नहीं है। तो ऐसे अर्घ्य और माला, पान, चंदन लेप और अन्य प्रार्थना करना चालू किया। तो ये पांच छह श्लोकों के अंदर ये बहुत सुंदर प्रार्थना है सुदामा ब्राह्मण, सुदामा फ्लोरिस्ट की। सुदामा कह रहे हैं, हे प्रभु, प्राह न सार्थकम जन्म पावितम च कुलम प्रभो पित्र देवर शयो मह्यम तुष्टामि आगमने नवाम। तो इस पहले श्लोक के अंदर वे अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, अपने सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि आपके चरण कमल मेरे घर में आए हैं तो मेरा जन्म पवित्र हो गया है। प्राह न सार्थकम जन्म, मेरा जन्म पवित्र हो गया है। पावितम, पावितम अर्थात पवित्र हो गया है। और कुलम प्रभो, हे प्रभो, मेरा जो वंश है, खानदान है, कुल है, यह पवित्र हो गया है। पित्र देवर शयो मह्यम तुष्टम ही तुष्टा ही आगमने नवाम, कि आपके आगमन से क्या हो गया है, आप दोनों के, वाम मतलब आप दोनों, कृष्ण बलराम के आगमन से मेरे जो पितर हैं और जो देवता हैं और जो ऋषि हैं, ये तीनों क्या है, मेरे से तृप्त हो गए हैं। कि वो सब सोच रहे होंगे कि देखिए हमारे खानदान में एक ऐसा हमारा वंशज आया है जिसकी सेवा जो साक्षात श्री कृष्ण बलराम की सेवा कर रहा है, तो वे भी बहुत धन्य होंगे, धन्य महसूस कर रहे होंगे कि हमने क्या पवित्र कार्य किया है कि हमारा ऐसा वंशज को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और फिर वे प्रार्थना करते हैं, भवंतों किल विश्वस्य जगतः कारणम परम अवतीर्ण विहानशेन क्षेमायच भवायच। आप दोनों भगवान इस ब्रह्मांड के परम कारण हैं, इस जगत को भरण पोषण तो समृद्धि प्रदान करने के लिए आप अपने अंशों समेत अवतरित हुए हैं। तो वह माली जानता था भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को, तो प्रार्थना कर रहा है और फिर कहता है कि हे भगवान, आप सबके शुभचिंतक मित्र हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, अतः आप सबों को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, अभी भगवान ने एक दर्जी, एक धोबी ने कपड़े नहीं दिए तो भगवान ने मार दिया उसको। उसके बाद में दर्जी ने कपड़े सिल दिए तो भगवान ने मुक्ति का आशीर्वाद दे दिया। तो भगवान निष्पक्ष थोड़ी हैं, ये निष्पक्षता तो नहीं है। यदि कोई भगवान की हाँ में हाँ नहीं भरेगा तो भगवान उसका वध कर देंगे, और जो चापलूसी करेगा तो भगवान आशीर्वाद दे देंगे। तो ये तो कोई साधारण व्यक्ति भी ऐसा ही करेगा, है कि नहीं? तो भगवान कहां से निष्पक्ष हुए? क्या निष्पक्ष हैं भगवान की नहीं? हाँ, कैसे? हाँ जी, भगवान ने उसको मार दिया, प्रभु जी कहते तो उसका उद्धार ही हुआ। इससे तो भगवान की निष्पक्षता तो नहीं साबित होती ना। वैसे कह सकते हैं आप कि ठीक है, भगवान किसी का भी वध करेंगे तो उसका उद्धार हो जाता है, तो इस प्रकार से भगवान के बेनिफिट का फल है। लेकिन भगवान को कोई अपमान करे चाहे मान दे, भगवान तो सबको प्रेम ही करना चाहिए ना। ये तो बड़ा क्रूर तरीके से भगवान ने डील किया उसके साथ, तो भगवान निष्पक्ष कैसे हुए? नहीं, कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव में मेरा भजन करता है मैं उसी प्रकार से उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसी प्रकार से व्यवहार करता हूँ उसके साथ में। तो यह व्यक्ति अपमानजनक शब्द बोल रहा था तो मैं क्या करता? मैंने एज इट इज रेसिप्रोकेट किया उसके साथ में। जिसने प्रेम के साथ रेसिप्रोकेशन किया, प्रेम का आदान प्रदान किया, तो मैंने भी प्रेम का आदान प्रदान किया। इसमें कहाँ पे निष्पक्षता क्या है? जैसी जिसकी भावना है वैसे मैंने रेसिप्रोकेट किया है कि नहीं? और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण सब वैसे निष्पक्ष हैं क्योंकि प्रत्येक जीव को अवसर प्रदान करते हैं सेवा करने का। उस मामले में चाहे वो दर्जी हो, चाहे वह धोबी हो, चाहे ये माली हो, भगवान ने समभाव से सबको सेवा प्रदान किया है कि नहीं? कृष्ण कह रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः अप्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम। कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के प्रति समान समभाव रखता हूँ, न मैं द्वेषोस्ति न मैं प्रिय, न कोई मुझे प्रिय है ना किसे मैं द्वेष रखता हूँ, लेकिन जो भक्ति भावना से मेरा भजन करता है मैते तेषु चाप्यहम, मैं उसमें निवास करता हूँ, वो मुझ में निवास करता है। तो यहाँ पे भगवान जो है, ये सुदामा जो माली है, ये कह रहे हैं कि भगवान आप निष्पक्ष हैं। जैसा जीवात्मा भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करेगा, भगवान उसी प्रकार से उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। अतः यद्यपि आप अपने भक्तों से प्रेमपूर्ण पूजा का आदान प्रदान करते हैं, फिर भी आप सभी प्राणियों पर सदा संभाव रखते हैं। कृपया इस अपने दास को आप जो चाहते हो वह करने का आदेश दें। आपके द्वारा किसी सेवा में लगाया जाना किसी के लिए भी महान वरदान है। तो वहां पर वो यही प्रार्थना कर रहा है, और प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में इस पे जोर देते हैं, वह क्या वरदान मांग रहा है भगवान से कि हे भगवान मुझे क्या दीजिए, आप अपनी सेवा में लगाने का वरदान दीजिए। ये बहुत परम सौभाग्य की बात है कि किसी को भगवान आपकी सेवा का मौका प्राप्त हो रहा है। तावाज्ञापयतम भृत्यम किमहम कर्माणि माम, कि आप दोनों की सेवा में लगना किसी के लिए परम सौभाग्य की बात है। इत्यभिपेत्र राजेंद्र सुदामा प्रीत मानस शस्तई सुगंध कुसुमेर माला विरचिता ददौ। और फिर इसने क्या किया, बहुत प्रसन्न होके बहुत सारे अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से सुगंधित पुष्पों के साथ में भगवान के लिए माला बनाई और भगवान को अर्पित की। आजकल तो विडंबना है कि जो माला हम भगवान को पहनाते हैं आधे से ज्यादा फूलों के अंदर खुशबू नहीं होती किसी प्रकार से। जितने भी ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के लिए अखबार में कटिंग आया था जन्माष्टमी के ऊपर कि थाईलैंड और मलेशिया से लाए गए फूलों से जो है मंदिर सजाया जाएगा, ऐसा ना भारत के अंदर जो फूल होते हैं वो कहीं पर नहीं होते। विदेश में जितने फूल होते हैं उनमें कोई सुगंधी नहीं होती, दिखने में खुशबूदार लगेंगे, कई फूल तो लगेगा प्लास्टिक के फूल हैं जैसे, है कि नहीं। लेकिन तो उन्हीं सारे जो सुगंधित पुष्पों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है वैकुंठ लोकों के अंदर, ये ऑर्चिड, कार्नेशन, चाइना रोज, इनका वर्णन किसी प्रकार से भागवतम के अंदर आता नहीं है। तो ये जो माली था इसने बहुत सुगंधित खुशबूदार और अच्छे रंग बिरंगे पुष्पों के साथ भगवान को मालाएं जो है पुष्पमाला अर्पित की। कृष्ण बलराम ने वो मालाएं पहनी, बहुत प्रसन्न हुए, उनके संगी बहुत प्रसन्न हुए, और दोनों कृष्ण बलराम ने उस सुदामा को मनवांछित व्रत प्रदान किए। तो क्या वरदान मांगा था उस सुदामा ने, इस श्लोक के अंदर वर्णन आता है। सोपी वव्रे चलाम भक्तिम तस्मिन् एवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दम् भूतेषु च दयां पराम्। तो इसके अंदर जो है बड़ा सुंदर श्लोक है, उसने क्या चुना, पहला वरदान मांगा भक्तिम तस्मिन् एवाखिलात्मनि, कि हे भगवान अखिलात्मा, जो अखिलात्मा है वे भगवान परमात्मा है, उनके प्रति क्या मांगा, भक्ति। भक्तिम तस्मिन, कि आपके प्रति मेरे को क्या हो, अविचल भक्ति हो। तद भक्तेषु जो सौहार्दम, और आपके जो भक्त हैं उनके साथ क्या हो, सौहार्द, मित्रता हो, स्नेह हो उनके साथ, प्रेम हो। और तीसरा क्या मांगा, भूतेषु च दयाम पराम। भूत मतलब, भूतेषु मतलब जीव, और दयाम पराम उनके प्रति क्या हो, दया हो। तो भगवान के प्रति भक्ति हो, भगवान के भक्तों के प्रति मित्रता स्नेह, और जीवों के प्रति क्या हो, दया। ये तीन वरदान उन्होंने मांगे और भगवान ने कहा तथास्तु। और इति तस्मै वरम दत्वा श्रियम चान्य वर्धिनिम बलम आयुर यशः कांतिम निजर गाम सहाग्रजः। तो भगवान ने ये तीनों वरदान दिए और साथ साथ उसे क्या दिया, बल, दीर्घायु, यश, कांति, और उसके परिवार की सतत बुद्धिमान हुई समृद्धि भी प्रदान की। तत्पश्चात कृष्ण और उनके बड़े भाई ने उनसे विदा ली। यहां पर छोटा तात्पर्य है अंतिम श्लोक का, इस अध्याय का ये। हम यहां पर दुष्ट धोबी और भक्त माली सुदामा के साथ भगवान कृष्ण के व्यवहारों का स्पष्ट अंतर पाते हैं। भगवान अपने विरोधियों के लिए वज्र के समान कठोर हैं और शरणागतों के लिए गुलाब के समान कोमल। इसीलिए हमें निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हित में है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अंतर्गत कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश नामक 41वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्तिनाथ स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे अंतर है, देखिए बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर कि भगवान की जो धोबी के साथ लीला है और भगवान के साथ माली की लीला है। इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है, वह यह शिक्षा है कि हम सबको विनीत भाव से अपने स्वयं के हित में भगवान के शरण में जाना चाहिए। हमें उस धोबी की तरह दुष्ट बुद्धि का नहीं होना चाहिए जो मैं और मेरा के चक्र में फंसकर भगवान को भगवान के प्रिय वस्तुओं का अर्पित ना करें, बल्कि मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर, कि अपने मन शरीर और वाणी को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अनहेजिटेटिंगली बिना किसी हिचक के हमें जो है ऑफर करना चाहिए, इस माली सुदामा के समान और ना कि दुष्ट बुद्धि के धोबी के समान होना चाहिए। यही हमारे परम हित के अंदर है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान हमें यही सिखाने के लिए आए, देखो मेरे हित में नहीं आओगे तो क्या होगा, मेरे शरण में नहीं आओगे तो क्या होगा, धोबी की तरह तुम्हारा विनाश होगा, और माली के सुदामा की तरह आओगे तो क्या होगा, आपका उद्धार होगा। और इसीलिए भगवान वज्रादपि कठोरम कुसुमादपि कोमलम, भगवान वज्र के समान कठोर भी हैं और एक पुष्प के समान कोमल भी हैं। जैसे कि हम रोज सुबह प्रार्थना गाते हैं, नमस्ते नरसिम्हाय तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, कि तव कर, कर मतलब हाथ, हाथ कैसा है भगवान का, कमल के समान कोमल है और वरदान देने वाला है। तव कर कमल वरे नखम, और इस कमल के ऊपर क्या है, इतने कैसे नख है वो, अद्भुत श्रृंगम, श्रृंगम मतलब चट्टान, जो हिरण्यकशिपु के चट्टान को भी उन्होंने क्या है, चट्टान समान छाती को जिन्होंने फाड़ दिया, शिला टंक नखालय हिरण्यकशिपोर वक्षः। तो आप देखिए कहीं कहां पर एकदम कोमल, कमल के समान सॉफ्ट हाथ है ना, और उसके ऊपर बिल्कुल कठोर तलवार के समान, बर्छे के समान जो है कठोर तलवार के समान उनके नाखून। तो केवल भगवान के अंदर ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि हाथ प्रहलाद महाराज के लिए वरदान देने के लिए और नाखून किसके लिए, हिरण्यकशिपु के वध के लिए। तो भगवान वज्रादपि कठोरम कुसुमादपि कोमलम। अध्याय 42 जो है इसके अंदर दो लीलाएं आती हैं मुख्यतः। पहला भगवान का कुब्जा से जो थोड़ा बहुत अभी पहला मीटिंग होता है, कुब्जा का उद्धार त्रिवक्रा, और दूसरा जो है धनुर्भंग, धनुष का किस प्रकार से भगवान ने जो है तोड़ा उसे, तो कंस ने, तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से अब बहुत ही ऑलरेडी सुंदर थे, सुंदर उनकी कांति है, और उसके बाद बहुत ही सुंदर वस्त्र उन्होंने डाले, आभूषण डाले, और अब पुष्पमाला डालने के बाद पूरे नगर में विहार कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं, अथ वज्रनाज पथे न माधव स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक्य कुब्जाम युवतीम वरानाम पप्रच्छयान्तिम प्रहसन्न सप्रदः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान माधव जब राजमार्ग पर जा रहे थे तो एक कुबड़ी स्त्री को देखा जिसका मुख तो आकर्षक था और हाथ में क्या लेके जा रही थी, वे एक थाल लेके जा रही थी जिसपे बहुत सुगंधित लेप थे। तो भगवान श्री कृष्ण प्रेमानंद दाता जो है, पप्रच्छ यांतिम प्रहसन रसप्रदः, भगवान का एक नाम यहाँ पे वर्णन आता है, एक तो माधव और दूसरा है रसप्रदः, कि भगवान सब प्रकार के आनंद को देने वाले हैं। तो उन्होंने उससे पूछा, उस कुब्जा से पूछा, तो अब विष्णुनाथ ठाकुर बताते हैं इसके लिए कि वह जो कुब्जा थी वह भगवान की भार्या सत्यभामा का अंश रूप थी, अंश रूपा थी। सत्यभामा भगवान की भू शक्ति है, तो भू का एक अर्थ है पृथ्वी भी है, तो सत्यभामा का ही एक प्रतीक जो है वे हैं पृथ्वी देवी, भू देवी भगवान की भू शक्ति हैं। और उस समय जो है पृथ्वी असुरों के बोझ से झुक गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण दुष्ट शासकों का वध करने के लिए अवतरित हुए थे। तो इस श्लोक में जो ये कुब्जा है, क्योंकि ये सत्यभामा की अंश रूपा है, तो वे भी प्रतिनिधित्व करे धरती के समान ही, और जो उस कुब्जा को सीधा करने की लीला है, इससे भगवान क्या संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने इस कुब्जा को सीधा किया है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी उसको भी मैं क्या करूंगा, जो कि इन असुरों शासकों के बोझ से झुक गई है, उसे भी मैं सीधा कर दूंगा, अर्थात उस बोझ से मुक्त कर दूंगा। तो यह इस लीला का एक भावार्थ है, बेसिकली अभिप्राय है भगवान श्री कृष्ण का, जो विष्णु चक्र ठाकुर पर बताते हैं। और लेकिन यहां पे भगवान जो है कृष्ण उनसे हंसते हुए कहते हैं, केवल मजाक करने के लिए, क्वातंबरोर्वे तदुह्यनुलेपनं कस्यांगनेवा कथयस्व साधुनः देहवयोरंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिराद् भविष्यति। भगवान ने कहा हे सुंदर जांघों वाली तुम कौन हो, और ये लेप हे सुंदरी, अब वो कहीं से सुंदरी तो है नहीं, कुब्जा है, तो किसके लिए है सच सच बता दो, और यह उत्तम लेप हम दोनों भाइयों को दे दो, यदि दे दोगे तो क्या होगा, तुम्हें शीघ्र ही कोई महान वर प्राप्त होगा। तो भगवान ने परिहास किया, मजाक किया उसके साथ में, और कह रहे थे कि बहुत सुंदर, बहुत शीघ्र मैं तुम्हें क्या करने वाला हूं, सुंदर बनाने वाला हूं। तो ये भगवान अभिप्राय दे रहे हैं। तो उस दासी ने उत्तर दिया, दास्यस्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा ही अनुलेप कर्मणि मदभावितम भोज पते रति प्रियम विना युवाम कौन्यस्तमस द अर्हति। तो बोला हे सुंदर, मैं राजा कंस की दासी हूं, और ये जो लेप है मैं राजा कंस के लेके जा रही हूं, और ये बहुत उत्तम क्वालिटी के लेप है जिसकी वजह से राजा जो है मेरा बहुत सम्मान करते हैं, और इन लेपों को भी राजा बहुत चाहते हैं, और मेरा नाम क्या है, त्रिवक्रा है, वक्र मतलब जो बेंट है, मुड़ा हुआ, त्रिवक्रा मतलब तीन जगह से जो बेंट है। तो अब ये जो लेप है बहुत हाई क्वालिटी के हैं, और तुम जैसे युवकों के अलावा इसके लिए कोई सूटेबल कैंडिडेट भी नहीं है, तो इसलिए जो है कृष्ण के सौंदर्य आकर्षण मिठास हंसी वाणी और चितवनों से अभिभूत मन वाली त्रिविक्रा ने कृष्ण और बलराम को पर्याप्त मात्रा में वो लेप दे रहे, बोले जितना चाहिए उतना आप लीजिए। और फिर कृष्ण बलराम ने जो है अपने शरीर पर अब वो लेप भी लगाया। तो बताया जाता है कृष्ण भगवान ने कौन सा रंग का लेप लगाया, कौन से रंग का लेप लगाया होगा, ब्लू नहीं, येलो, कृष्णा ने येलो और बलराम जी ने ब्लू लगाया। यहाँ पे जो विष्णु आचार्यों ने ये बोला है कि इस बारी कृष्ण भगवान ने जो है अपना रंग येलो किया और बलराम जी ने जो है ब्लू ऐसा किया। और जब भगवान कृष्ण को इस प्रकार से वो लेप दे दिए तो कुब्जा से भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान ने निश्चय किया कि अभी मैं अपने दर्शन का जो फल प्रदान होता है, मेरे को सेवा करने का फल, वो इस कुब्जा को अवश्य प्रदान करूंगा। तो क्या किया भगवान ने, पदभ्याभम आक्रम्य प्रपदे द्वि अंगुली उत्तान पाणी न प्रगृह चिबुकेत अध्यात्मम उददीन नम अदच्युतः। तो भगवान ने क्या किया, उसके पैरों को अंगूठों के ऊपर अपना पैर रखा और दबाया, और अपनी थुड्डी से भगवान ने जो है एक एक उंगली रखी और ऐसे सीधा कर दिया जो है। तो तुरंत वो जो है भगवान मुकुंद के स्पर्श मात्र से वह कुब्जा जो है एक बहुत ही सुंदरी स्त्री बन गई, और ऐसा वर्णन है बहुत ही सौंदर्य फीचर जो है उसके फीचर्स थे। तो अब सौंदर्य आचरण उदारता से युक्त त्रिवक्रा को भगवान केशव के प्रति कामेच्छाओं का अनुभव होने लगा, तो उनके अंग वस्त्र के छोर को पकड़कर हंसने लगी और बोली कि हे वीर आओ मेरे घर चलो, मैं आपको यहां छोड़कर नहीं जा सकती, हे नरश्रेष्ठ मुझ पर तरस खाओ क्योंकि आपने मेरे चित्त को उद्वेलित कर डाला है। तो अब ये जो कुब्जा थी यानी अभी सुंदरी बन गई थी, तो भगवान कृष्ण को अपने घर में आमंत्रित कर रही थी, और उसको ये ध्यान नहीं रहा कि बलराम जी और बाकी ग्वाल बाल भी साथ के अंदर हैं, लेकिन कृष्ण को तो ध्यान था। तो भगवान ने बोला कि जब देखा तो भगवान बलराम जी की ओर देखने लगे, अब क्या करूं मैं, तो बलराम जी भी हंस रहे थे, सब ग्वाल बाल भी, कृष्ण ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, एश्यामी ते गृहम सुभ्रु पुंसाम आधि विकर्षणम साधित अर्थ अनुगृहाणाम न पांथानाम तम परायणम। तो बोले कि अभी देखो मैं अपना कार्य संपन्न कर लूंगा, उसके बाद में मैं तुम्हारे घर आऊंगा जो है, और उसको बड़ा सांत्वना दिया कि हम जैसे बेघर पथिकों के लिए तुम सर्वोत्तम आश्रय हो जो है। तो यहाँ पे दो आश्रय दे रहे हैं, एक तो हम अपने घर से दूर हैं और दूसरा क्या है, अभी हम अविवाहित हैं। ये दोनों संदेश भगवान कृष्ण ने दिया जो है। एक्चुअली देखा जाए ये सब चीजें फिल्मों में जहां से भी ली गई है कृष्ण से, भगवान से ही ली गई है, ये सब डायलॉग्स मूवीज के अंदर होते हैं इस प्रकार की चीजें। हीरो आता है ना, बहुत अट्रैक्टिव होता है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में जो हीरो को फेवर करता है तो जो है हीरो से प्रसन्न हो जाता है, कोई उसकी बात नहीं मानता है तो हीरो गुस्सा हो जाता है, लड़ाई करता है उसके साथ में, उसको हरा देता है कि नहीं। फिर हीरो के पास गर्लफ्रेंड आ जाती है, हीरोइन आ जाती है। तो ये सब जो भी है, भगवान कृष्ण जब एक हीरो के माफिक मथुरा में जा रहे हैं तो क्रमबद्ध तरीके से चीजें हो रही हैं, है कि नहीं। तो अगर मूवी बनानी हो तो किस पे बनानी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। उसके अंदर रोमांस, वायलेंस, स्टंट्स, जितने प्रकार के वैसे सब प्राप्त होंगे, है कि नहीं, मिरेकल्स, हर प्रकार के चीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, जो लोग कृष्ण से द्वेष करते हैं वे कृष्ण भगवान के द्वारा किए गए लीलाओं को ही लेते हैं, लेकिन किसी अन्य वस्तु को अपना, किसी अन्य व्यक्ति को अपना हीरो बना देते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं, नायकानाम शिरो रत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नायकानाम, सभी नायकों के अंदर शिरोमणि है कोई, तो वह कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसे कुब्जा का से बात करके भगवान श्री कृष्ण आगे चले। रास्ते भर में जितने व्यापारी थे उन्हें पान, मालाएं, सुगंध द्रव्य इत्यादि कई प्रकार की भेंटे उनको और बलराम जी को उन्होंने दी। और फिर जो है कृष्ण भगवान को देख करके जितनी भी स्त्रियां थी उनके अंदर माधुर्य भाव प्रकट हो जाता है। और विष्णुचरक ठाकुर बात बता रहे हैं कि जो प्रेम के, कामदेव के 10 लक्षण है वे सब प्रकट हो जाते हैं उन स्त्रियों के अंदर, एक को छोड़ करके। जो दसवां जो प्रेम का जो लक्षण है वो क्या है? मृत्यु। ये सब कृष्ण चैतन्य चरितामृत के अंदर भी ये दशों प्रेम की जो आभास हैं उसके ऊपर चर्चा होती है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से विरह होता है तब वे लक्षण बताए जाते हैं, और रामानंद राय और महाप्रभु के संवाद के अंदर भी। तो ये 10 दशाएं हैं, 10 दशाएं तो वो यहाँ पे वर्णन की गई है, चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। फिर कृष्ण लोगों से पूछा कि धनुर्युद्ध कहाँ हो रहा है, ये धनुर्यज्ञ कहाँ हो रहा है, कहाँ पे धनुष की पूजा की जा रही है। तो लोगों ने इशारा किया कि फलानी जगह पे जो है यज्ञ वेदी बनाई गई है, आप वहां जाइए। तो भगवान वहां गए तो बहुत ही विचित्र धनुष देखा उन्होंने, जो कि आकाश में धनुष के समान था, बहुत ही शक्तिशाली विशाल धनुष था वो। तो उस अत्यंत ऐश्वर्य युक्त धनुष की लोगों की विशाल टोली द्वारा निगरानी की जा रही थी, और वे लोग उसकी आदर भाव से पूजा कर रहे थे। तो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे वहां पे, सबने मना किया लेकिन कृष्ण आगे बढ़ते गए और जाने के बाद क्या किया उन्होंने, वो धनुष को पकड़ा और उठा लिया। और उठाने के बाद बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से आराम से उठाया। और प्रत्यंचा समझते हैं क्या होता है? प्रत्यंचा मतलब जो धागा होता है, तो धनुष के नॉर्मली एक साइड पे पहले से बंधा रहता है और उसको दूसरी साइड पे बांधना होता है ना। तो जो प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, जब डोर चढ़ाने लगे, तो डोर चढ़ाते समय क्या, धनुष को पूरा बेंड करना पड़ता है। जितना ज्यादा वो बेंड होगा, तो जितना भी क्या कह सकते हैं अभी फिजिक्स के अंदर आपने जो पढ़ा रहेगा, तो उतना ज्यादा उस पर मोमेंटम होगा जब बाण छोड़ेंगे। बेसिकली ये धनुष का नॉर्मल स्टैंडर्ड है जो भी है। तो जब भगवान श्री कृष्ण उस प्रत्यंचा को चढ़ाने लगे उस धनुष के ऊपर, तो क्या हुआ, वो तुरंत ही टूट गया वो धनुष, बीच से उसके 2 भाग हो गए हैं। किस प्रकार से? यथेक्षु दंडम मदकरौ रुक्रमः। इक्षु दंड मतलब होता है गन्ना। तो जैसे कि जब हाथी किसी गन्ने के खेत में जाता है तो क्या करता है, अभी हम लोग गन्ने को लेंगे तो कोई तोड़ नहीं सकता ऐसे, कभी ट्राई भी मत कीजिएगा, हाथ टूट जाएगा, है ना। लेकिन जो हाथी होता है बड़ी आसानी से गन्ने के खेत में जाता है और गन्ने को 2 टुकड़ों में भाग कर देता है। उसी प्रकार से भगवान उस मतवाले हाथी के समान उन्होंने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए हो गए। ऐसे हम देखते हैं भगवान रामचंद्र के द्वारा भी यही हुआ था, जब हर धनुष शिव धनुष था तो भगवान रामचंद्र से प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और वो क्या हुआ, टूट गया वहां पर, है कि नहीं। तो धनुष को जब टूटा तो दशों दिशाओं के अंदर उसकी ध्वनि प्रकट होने लगी पृथ्वी और आकाश में। कंस ने भी सुनी इस ध्वनि को और बिल्कुल भयभीत हो गया, और वहां पर जितने भी कंस के सैनिक थे, रक्षक थे, वे बहुत क्रोधित हुए, कैसे इन 2 बच्चों ने धनुष को तोड़ दिया। तो चिल्लाने लगे, पकड़ लो, मार डालो, ऐसे ऐसे चिल्लाने लगे। तो जब देखा कि ऐसे मारने के लिए, आक्रमण करने के लिए कृष्ण बलराम ने देखा कि ये सैनिक लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, वही धनुष के 2 टुकड़े थे, दोनों ने एक एक उठा लिया और उसी से मार मार के जो है जितने रक्षक थे उनका वध कर डाला। ऐसी होता है ना, विलेन के बहुत सारे गुंडे आते हैं, हीरो 1-2 ही होते हैं बस, है ना, लेकिन सफिशियंट होते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे कृष्ण बलराम जो है असली ट्रू हीरो हैं, तो जितने भी सब आए उन सबों को मार दिया। तो कंस द्वारा भेजी गई सैन्य टुकड़ी को भी मारकर कृष्ण बलराम यज्ञशाला के मुख्य द्वार से निकल आए और सुखपूर्वक ऐश्वर्यमय दृश्य देखते हुए नगर में घूमते रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उनका बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, वैसे भी नॉर्मल है, भगवान को क्या फर्क पड़ता है, चींटी के समान कुछ लोग आक्रमण कर भी देंगे तो। और जो है कृष्ण बलराम द्वारा किए गए अद्भुत कार्य, उनके बल साहस एवं सौंदर्य को देखकर नगरवासियों ने सोचा कि अवश्य ही वे देवता हैं। तो विचरण कर रहे थे तो सूर्यास्त होने लगा, तो वे नगर को छोड़ के अपने ग्वाल बालों के साथ नगर के जस्ट बाहर जो उनका टेंट था, जहां उनके बैलगाड़ियां बंधी थी, वहां पे लौट आए। और जब लौट आए तो फिर वहां पे जो है वृंदावन से मुकुंद के विदा होते ही समय गोपियों ने भविष्यवाणी की थी कि मथुरावासी अनेक वरों का भोग करेंगे, और अब उन गोपियों की भविष्यवाणी सत्य उतर रही थी, क्योंकि मथुरा के वासी पुरुष रत्न कृष्ण के सौंदर्य को एकटक देख रहे थे। निसंदेह लक्ष्मी जी उस सौंदर्य का ऐश्वर्य इतना चाहती थी कि उन्होंने अनेक अन्य लोगों का परित्याग कर दिया, यद्यपि वे इनकी पूजा करते थे। तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम के ऐश्वर्य को सब मथुरावासी देख रहे थे, उनके सौंदर्य को, उनके पराक्रम को, उनके बल को। और फिर सभी ग्वाल बालों ने कृष्ण बलराम के चरण इत्यादि धोए और रात को उनको खीर का आस्वादन कराया, और दोनों ने वहां पे रात को विश्राम किया वहां टेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे कंस की हालत खराब हो गई जब सुना कि दोनों भाइयों ने खेल खेल के ना धनुष बाण तोड़ दिया ऐसे ही, है ना। तो वो बहुत ही, और बाकी उसके सारे रक्षकों और सैनिकों को भी मार दिया, तो बहुत डर गया। वो समझ गया कि मेरी मृत्यु कहाँ आ गई है, अब मथुरा के द्वार पे आ चुकी है, है ना। तब वो भविष्यवाणी को याद करने लगा, और जागते और सोते हुए कई कई अपशकुन देख रहा था वो। और वो अपशकुन क्या क्या थे, अदर्शनम श्वशिरसा प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि द्वितीय च द्वैरूप्यम ज्योतिषे तथा। जब उसने अपनी परछाई देखी शीशे या जल के अंदर तो क्या देखा, ऊपर सर नहीं है। अब देखिए कोई अपनी परछाई देखे और सर ना दिखे, उसके बाद में जब आसमान में देखता था तो चंद्रमा कितने दिखाई पड़ते थे उसे, दो दो, तारे भी दो दो दिखाई पड़ने लगे, अपनी छाया के अंदर उसे छेद दिखाई पड़ने लगे। जो परछाई होती है उसमें देख रहा जगह जगह बीच बीच के अंदर कुछ छेद हैं, और प्राण वायु सांस लेने की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही उसे, और वृक्ष सुनहली आभा से प्रपच्छन्न लगे। उसे लगा कि सारे जो पेड़ हैं वो कैसे हो गए, सुनहरे रंग के हो गए हैं। उसके बाद में अपने पद चिन्हों को देख ही नहीं पा रहा था। कृष्णा बुक में मेंशन है कि जब वो कीचड़ में पैर रखता था, अब कोई आदमी कीचड़ है, मान लीजिए आप अभी कीचड़ हो रखा होगा, बाहर कहीं पैर रखेंगे तो क्या होगा, आपके फुटप्रिंट छप जाएंगे ना, चरण कमल तो नहीं लेकिन आपके पद चिन्ह जो है वहां पे छप जाएंगे। लेकिन जब कंस ऐसे जल के ऊपर या कहीं पर रखता था, देखता था क्या, कोई फुटस्टेप ही नहीं है वहां पे, कोई पद चिन्ह नहीं है, तो देख के और डरता था ये क्या हो रहा है। तो ये तो जागते हुए देख रहा था ये सारे अपशकुन, और सोते हुए अब नींद भी नहीं आती थी, लेकिन मान लीजिए कोई झपकी आ गई तो तुरंत सपने में क्या देखता था, सपने में देखता था कि भूत प्रेत उसका आलिंगन कर रहे हैं, है ना, और गधे पे सवार है वह, उसकी गधे पे सवारें निकाली जा रही है, कोई विष पिला रहा है उसे, यही नहीं अड़हूल फूलों की माला पहने। अब ये पता नहीं कौन सा फूल होता होगा, जहां तक इंग्लिश में क्या लिखा है, हिबिस्कस, एनएलडी है पता नहीं, एक फूल होता है हिबिस्कस, वो नॉर्मली जो देवी की पूजा में यूज किया जाता है, अड़हूल, हाँ यह वही फूल है नॉर्मली। इसे सिर्फ जो ऐसा लाल रंग का रहता है, बीच में एक वो निकला रहता है, इसको बहुत कोई मतलब ऐसा सतोगुणी फूल नहीं है ये, कुल मिला के समझ लीजिए, और क्या बोले हैं, तो ले दे के तमोगुणी फूल है। जब बलि चढ़ाते हैं काली देवी को, हम जब बनारस में थे तो वहां एक बहुत फेमस दुर्गा मंदिर था, तो वहां दुर्गा मंदिर में केवल यही फूल मिलता था। अब जब आप कृष्ण बलराम के फूल के बाहर, जैसे शिव जी के मंदिर के बाहर क्या मिलता है आपको, वो धतूरा बेलपत्र इत्यादि, ऐसे ही काली के मंदिर के बाहर आपको, दुर्गा देवी के मंदिर के बाहर ये वाला फूल मिलेगा, उसे पहचान जाएंगे आप, जो लाल रंग का रहेगा, बीच में डंडी निकलेगा ऐसा। तो उसकी माला पहने हुए था, और तेल पोते एक नग्न व्यक्ति उधर आ रहा था। और इन तथा अन्य ऐसे अपशुकनों को स्वप्न में जागते देखकर कंस अपनी मृत्यु की संभावना से भयभीत था और चिंता के कारण वह सो न सका। देखिए दो विपरीत लोग हैं, दोनों अपनी मृत्यु के जब समाचार मिला सोए नहीं, एक कंस को नींद नहीं आ रही है भय के मारे, एक महाराज परीक्षित थे जिनको 7 दिन का नोटिस मिला था तो उनको भी नींद भूख प्यास नहीं था। दोनों में अंतर देखिए, एक दैवी गुण और असुर गुण के अंदर, दोनों के पास नोटिस है। परीक्षित महाराज 7 दिन का नोटिस है, कंस के बाद तो कम से कम 8 साल का नोटिस था कि देवकी की 8वीं संतान वध करेगी, लेकिन उसी दिन से भयभीत हो गया वो, है कि नहीं। तो जो असुर होते हैं वो अपनी मृत्यु से बहुत भयभीत रहते हैं उनके पास आने वाली किसी भी संकट से, तो यहाँ वो भी बहुत डर गया। रात बीत गई, जब सूर्य सुबह उठा तो वह भी उस मल्ल युद्ध दंगल जो उन्होंने रेसलिंग WWE क्या बोलते हैं आजकल, WWE आजकल बोलते हैं ना, हमारे बचपन में WWF बोला करते थे, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, स्टार्टिंग यहीं से हुआ था कृष्ण बलराम से। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो भगवान से प्रारंभ नहीं हुआ, जन्माद्यस्य यतः, हर चीज जो है भगवान कृष्ण से प्रारंभ होती है। तो रेसलिंग का गेम भी यहीं से चालू हुआ था, तो कंस उसका आयोजन करने लगा। राजा के लोगों ने मल्ल स्थल की विधिवत पूजा की, अपने ढोल और अन्य वाद्य बजाए और दर्शक दीर्घाओं को मालाओं झंडियों फीतन और बंधन वालों से खूब सजाया गया, अर्थात स्टेडियम को बहुत सुंदर सजाया गया हर प्रकार से। नगर निवासी और पड़ोसी जिलों के निवासी ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादियों के साथ आए और स्टेडियम में आराम से सुखपूर्वक बैठ गए। राजसी अतिथियों को विशिष्ट स्थान दिए गए, VIP सीट थी, कुछ रिजर्व सीट थी वहां पे, है ना, जो क्या बोल सकते हैं पेवेलियन था या कुछ भी जो है, वहां पे उन सबको बैठाया गया। और फिर अपने मंत्रियों से घिरा हुआ कंस अपने राजमंच पर आसीन हुआ, किंतु अपने विविध मंडलेश्वरों के बीच बैठे हुए उसका हृदय कांप रहा था, अंदर से कांप जा रहा था, चाहे इतने सारे योद्धा थे वहां पे, मल्ल थे उसके मंत्री थे, लेकिन डर रहा था। और जब कुश्ती के उपयुक्त ताल पर वाद्य यंत्र जोरों से बजने लगे तो खूब सजे गर्वीले पहलवान अपने अपने प्रशिक्षकों समेत अखाड़े में प्रविष्ट हुए और बैठ गए। आनंददायक संगीत से उल्लसित होकर चाणूर मुष्टिक कूट शल तोशल अखाड़े की चटाई पर बैठ गए, वो लोग बैठ गए चलो अब अपना जो है। और भोजराज कंस द्वारा बुलाए जाने पर नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने उसे अपनी अपनी भेंटे पेश की, तब वे एक दीर्घा में जाकर बैठ गए। यहाँ पे ये अध्याय भी समाप्त होता है और फिर कृष्ण बलराम आराम से प्रवेश करेंगे। रास्ते में क्या योजना की थी, एक विशाल हाथी रखा था बहुत ही कुवलया पीड़, और उसके ऊपर जो उसका महावत था उसको बोला कि इसको क्या करना, थोड़ा मदिरा का पिलाना, और उसने कृष्ण बलराम को अटैक किया, फिर कृष्ण बलराम ने उसका वध किया और फिर उसके जो क्या बोलते हैं दांत टस्क उसको लेकर एक कृष्ण बलराम दोनों प्रवेश करते हैं रंगमंच के अंदर, और इस रेसलिंग के मैच को कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण बलराम की, कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, और आने 2 दिन बाद 48 घंटे हमारे पास में, तो जो है सभी लोग बाह्य रूप से आंतरिक रूप से तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें अच्छे प्रकार से लगे रहिए। और हम आप सबके लिए यही हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भक्तों को बहुत श्री कृष्ण बलराम की कृपा प्राप्त हो और हम सबका उनके प्रति आकर्षण हो। और जिस प्रकार से ये सुदामा माली ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, कुब्जा ने प्रसन्न किया, उस दर्जी ने प्रसन्न किया, उसी प्रकार से हम लोग भी प्रसन्न कर सकें और हमारे अंदर जो कंस की या जो उस धोबी की मानसिकता है वो दूर हो सके। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरे बोल।